एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर।
रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम।
एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर,
तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर।
आसमान समेटे क्यों उड़ान तेरी निराशे निराशे। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की तुम संतान हो। एक उफान भर तू पार कर ले हर मुश्किलों का समंदर। हो तुम आसमान समेटे क्यों उड़ान तेरी निराश है। सफलता से संतुष्ट नहीं और असफलता से निराश नहीं, ये स्लोगन है। सफलता से संतुष्ट नहीं, जो पाया है वो कुछ भी नहीं है। अध्यात्म जगत में और आगे और आगे और आगे, और यदि असफलता हो जाए तो दुखी नहीं, उदास नहीं, निराश नहीं, क्योंकि मार्ग बहुत लंबा है, रास्ता बहुत नाजुक। The path is narrow, बहुत सरकरा, और इसमें ऐसी बहुत सी बातें होगी जो हम नहीं चाहते, परंतु जो हो रहा है और जो हुआ उसे सीखना है। निरंतर हर घटना शिक्षक है, हर विघ्न टीचर, तो साधना का आज का 78th दिन भट्टी के चौथे चार चरणों की इस भट्टी का ये तीसरा चरण प्रश्न उत्तर की इस श्रृंखला का आज का 11वां दिन लक्ष्य है प्रश्न ही नष्ट हो जाए, प्रश्नों के उत्तर नहीं, प्रश्न ही समाप्त हो जाए, प्रश्न ही गिर जाए। और ये जो लंबी प्राणिक यात्रा है, ये चेतना के उत्थान की यात्रा है, अप्स डाउन अप डाउन, बहुत सी बातें इसमें होगी, बट देर इज नो लॉस, द एग्जिस्टेंस इज रिच, ऊर्जा का आदान प्रदान। इसलिए अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो कुछ घटनाएं, इवेंट्स, हैपनिंग्स, जो कुछ है वो भावी है, वो ड्रामा है। दक्षिण भारत में एक संत है जिनकी कुछ दिनों पहले भी चर्चा की थी, माता अमृतानंद में, अम्मा जिनको कहते हैं। जब सुनामी आया था तो उनके आश्रम के कुछ ब्रह्मचारीगण वहां सेवा के लिए पहुंचे, तमिलनाडु में एक स्थान पर राहत कार्य के लिए। और उनमें से एक ब्रह्मचारी को लगा कि वहां पर एक शनिदेव का मंदिर है तो क्यों ना जाकर प्रार्थना की जाए, दर्शन किए जाए। तो वो ब्रह्मचारी कुछ और अन्य ब्रह्मचारियों के साथ उस मंदिर में पहुंचता है। मंदिर में बहुत भीड़ है, लंबी कतार है, भीड़, लाइन लगी हुई है, और वो लाइन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वो अधीर होता है, बेचैन होता है, कुछ कुछ करता है, इधर उधर चिल्लाता है, थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता है, लोग उसे फिर पीछे करते हैं। वहाँ जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, पुलिस, वो उसे देखते हैं और उन्हें थोड़ा संदेह होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है ये चोरी है, जेब कतरा, पिक पॉकेट। उससे पूछताछ करते हैं, परंतु उसकी वो एक नहीं सुनते और उसे लेके जाके सीधा जेल में डाल देते हैं। वो रात भर जेल में रहता है। दूसरे जो मित्र ब्रह्मचारी है, वो देखते हैं उनका मित्र वहां नहीं है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि उनका एक मित्र ब्रह्मचारी लॉकअप में है और पूरी रात लॉकअप में था। वो सुबह जाते हैं, सब इंस्पेक्टर से मिलते हैं, सत्य घटना बताते हैं, वो वहां क्यों आए, किस उद्देश्य से आए और मंदिर किस लिए आए थे। ये सब सुनकर वो सब इंस्पेक्टर उस ब्रह्मचारी को तुरंत रिहा कर देता है। सारे ब्रह्मचारीगण वापस आश्रम पहुंचते हैं, अम्मा से मिलते हैं और पूछते हैं, हम इतने महान श्रेष्ठ लक्ष्य और कार्य के लिए वहां गए थे और उसके बाद भी इस ब्रह्मचारी के साथ ये घटना क्यों हुई। लक्ष्य कितना ऊंचा था, राहत कार्य, लक्ष्य कितना ऊंचा था, सेवा, निस्वार्थ सेवा, फिर भी, और उसके बाद मंदिर, मंदिर भी किस लिए, जो दुखी है, त्रासदी में जो दुखी हुए उनके लिए प्रार्थना के लिए गए थे, उसके बाद भी ये कार्य ऐसा क्यों हुआ। तो अम्मा उन सबको कहती है, कर्मों की गति बहुत सूक्ष्म है, जब भी हम चाहते नहीं है ऐसा हो, परंतु फिर भी ऐसी ऐसी घटनाएं होगी। और वो उनसे कहती है कि हो सकता है उस समय उस साधक उस ब्रह्मचारी के जीवन में कुछ ऐसे ग्रह होंगे कि जिनके प्रभाव से ये घटना हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हो सकता है उसे किसी कर्म की सजा मिल रही है और वो सजा लंबी थी, परंतु क्योंकि वो पुण्य कर्म करने गया था उसलिए वो एक रात के लिए केवल लॉकअप में रहा, अन्यथा वो लंबा समय रह सकता था। परंतु इंटेंशन, मंशा बहुत शुद्ध थी, इसलिए अनहोनी घटनाएं, अनअंडरस्टूड, इल अंडरस्टूड ऐसी घटनाएं बहुत होगी। और हम इसमें ना जाए कि ये क्यों हुआ। ये नाटक बहुत विशाल है और एक बड़ा ड्रामा जो है उसमें, बड़ा जो प्लॉट है उसमें सब प्लॉट्स हैं, बड़े ड्रामा में, नाटक में नाटिकाएं हैं, बड़े नाटक में छोटी छोटी नाटक, छोटी छोटी नाटिका, बड़े स्वप्न में छोटी छोटी स्वप्नी। और कुछ कुछ होते रहेगा। ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, अच्छा नहीं था, अच्छा बुरा, ये एक उस समय का दृष्टिकोण है। जैसे ही चेतना में रूपांतरण आता है घटनाएं कहानियां बन जाती है हम ऊपर, ये हुई और खत्म, अब कौन सा दुख। हो तुम आसमान समेटे क्यों उड़ान तेरी निराश है, शौर्य की हुंकार सुन सरलता का गान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें सिंह की हो संतान तुम, एक उफान भर। इसलिए हर नया दिन एक नवीन उत्साह, एक नवीन उमंग, बिना निराश हुए। जो बीत गया सो बीत गया, द पास्ट इज द कैंसल्ड चेक, रद्द किया हुआ चेक है, उसका अब कोई अर्थ नहीं। आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ और दूसरों को भी बढ़ाओ। बांटो तो बढ़ेगा, ये खजाना कैसा है, बांटो तो बढ़ेगा। स्पिरिचुअल स्टैटिस्टिक्स, स्पिरिचुअल अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में नियम उल्टे हैं, वहां पर बांटो तो कम होता है, यहां बांटो तो बढ़ता है। क्या क्या बांटो, तीन चीजें बांटो। सबसे ज्यादा क्या बांटना है, किस बांटने पर रोक लगानी है जो ज्यादा बांटा जा रहा है। आज कहा ना बाबा, सबसे ज्यादा बांटते हैं ज्ञान, दूसरा नंबर मन से शक्तियां, और सबसे कम गुण। दिव्य गुण थर्ड सब्जेक्ट है, तो आज थर्ड सब्जेक्ट पर फोकस करना है। बिजी किसमें है, ज्ञान में, योग में और सेवा में। तीसरा है दिव्य गुण, गुणमूर्त बन दूसरों को गुणमूर्त बनाओ, ये संकल्प करो, ये प्रतिज्ञा करो। और तुम्हें बांटना है, क्यों क्यों बांटना है? दाता के बच्चे हो तो तुम्हारा स्वभाव है देने का, और जो बांटेगा वो बढ़ेगा, और सैंपल और भर गया अभी क्या करे। बाबा ने कहा समय और चांस, टाइम एंड चांस, इस अनुसार देते हो, सतत दो, लगातार निरंतर अखंड अटल। इस मुरली में एक हैबिट फॉर्मिंग का बहुत पावरफुल सिद्धांत है आज की अव्यक्त वाणी, जो सहज है वही निरंतर हो सकता है, जो कठिन है वो निरंतर नहीं हो सकता। इसलिए प्राणिक यात्री के लिए जो सहज है वही आगे बढ़ सकता है, सतत, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल वही हो सकता है जो सहज है, और जो एकदम मुश्किल है और कठिन है वो चार दिन चलेगा, पांच दिन चलेगा। हैबिट फॉर्मिंग का ये सिद्धांत है, अगर नई आदतें, न्यू हैबिट्स फॉर्म करनी है तो ऐसी आदत हो जो सहज हो, जो सहज है वही निरंतर है, जो शुरुआत में ही कठिन है वो निरंतर नहीं हो सकती, सस्टेनेबल नहीं है वो। इसलिए सतत दो, निरंतर दो, सहज है क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है देना, एक सेकंड भी देने बगैर नहीं रहो, और देना इसलिए क्योंकि तुम भरपूर हो, देना इसलिए क्योंकि तुम्हारे खजाने अविनाशी है, देना इसलिए क्योंकि तुम्हारे खजाने अखूट है, अखंड है, देना इसलिए है क्योंकि क्योंकि संसार की मांग है और संसार की आत्माएं दुखी है, उनका हर समय दुख का है, तुम्हारा हर समय सुख का है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये किसके लिए कहा आज, किसके लिए कहा? अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है, नहीं बहाने कोई उलाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम। किसके लिए कहा आज की मुरली? अभी नहीं तो कभी नहीं, ये तुम्हें केवल अब मिलता है परमात्मा प्यार, ये केवल और केवल अब मिलता है। देवताओं को परमात्मा प्यार नहीं मिलेगा, ना भक्तों को मिलेगा। भक्त भगवान की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उसे ढूंढेंगे, सत्य की खोज करेंगे, परंतु परम सत्य अप्रकट हुआ है, आध्यात्मिक राही सत्यान्वेषी होता है, सत्य की खोज, और सत्य की खोज पूरी हुई, सत्य को केवल जाना है बस, परंतु उसके भीतर प्रवेश करना है, उसको समझना है डिटेल, वो क्या है, वो कैसा है, क्योंकि हमारी लड़ाई बाहर नहीं स्वयं से है, विकार बहुत गहरे है। हिंदी में एक शब्द है आश्रव, स्त्रव, स्त्रव अर्थात बहता है, जो नासूर होता है फोड़ा, आश्रव उसमें जो बहता है उसे आश्रव कहते हैं, विकारों को आश्रव कहा जाता है। अनाश्रव अर्थात वो जिसने चित्त की धारा से बहने वाले विकारों से विमुक्ति पा ली है, चित्त धारा जहां निर्मल हो गई है उसे अनाश्रव कहा जाता है, और आश्रव अर्थात जो विकारी है। और जब जब विकार जगते हैं व्याकुलता आती है, अर्थात जब भी व्याकुलता हो जीवन में, समझना भीतर आश्रव है, और जब जब विकार अंत चेतना से बाहर बहता है, शरीर पर जीव रासायनिक क्रिया होती है, संवेदनाएं उत्पन्न होती है, हर विकार अपने साथ एक जीव रासायनिक क्रिया शरीर पर प्रकट करता है और उस जीव रासायनिक क्रिया के प्रति लगाव होता है, आसक्ति होती है। इसीलिए विकारों से छूटना इतना मुश्किल है क्योंकि ये व्यसन की तरह है, जैसा कोई अफीम ची, चरस ची, अफीम खाने के बाद क्या होता है, उसे नशा चढ़ता है। वो नशा उस अफीम के प्रति नहीं है, उस अफीम को पीने के बाद शरीर में, तन बदन में जो सुखद संवेदनाएं, अनुभूतियां होती है, उसके प्रति एडिक्शन है। उसी तरह विकार जब जगता है, कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो शरीर पर जीव रासायनिक क्रियाएं उत्पन्न करता है और उनके वजह से नशा आता है। और ये व्यसन बहुत गहरा है, विकारों का व्यसन और नशा स्थूल नशे से भी गहरा है। इसीलिए इससे छूट पाना ही मुश्किल। बौद्धिक रूप से पता चल गया ये गंदगी है, ये विकार है, इसे हटाना चाहिए, अच्छा नहीं है, इससे पश्चाताप होता है, इससे दुख होता है, परंतु बौद्धिक अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ। इसलिए राजयोग तक पहुंचने के दो ही मार्ग है, जिसकी पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है। पहला मार्ग प्राणिक लिविंग और दूसरा मार्ग संवेदनाओं का साक्षी होकर निरीक्षण। अनित्य है, आए और चले जाएंगे। जब तक सबकॉन्शियस माइंड पर आक्रमण नहीं किया जाए तब तक सब व्यर्थ है, केवल ऊपर ऊपर की सफाई है, ऊपर 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 ऊपर। वो सारे संकल्प, अच्छे अच्छे संकल्प, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, थोड़ी बहुत अनुभूति प्रभु प्रेम की, ज्ञान में बिजी, योग में बिजी, धारणा में बिजी, सेवा में बिजी, ये सारा बिजी रहना बाह्य मुक्ता मात्र है। अंतर मन तक अधिक पहुंचना है तो ये दो ही मार्ग है। इसलिए इस यात्रा में सभी आगे बढ़ रहे हैं। सॉलिड की रिजिडिटी से लिक्विड की फ्लूडिटी की यात्रा है, क्योंकि विकार केवल मन के तल पर नहीं है, साइकोसोमैटिक है, शरीर के तल पर भी है। इसलिए काम दोनों ही तलों पर करना पड़ेगा, केवल मन मना भाव करो इससे काम नहीं होगा। एक है शरीर का तल, एक मन का तल, आत्मा का तल और एक शरीर का तल। आत्मा शरीर में कांटा चुभता है तो आत्मा को कांटा चुभता है, आत्मा को कुछ होता है तो शरीर को कुछ होता है। अब तक का सारा पुरुषार्थ हमने आत्मा के तल पर किया है। ये प्राणिक भट्टी 108 दिन की शरीर से शुरू होती है, परंतु केवल शरीर तक नहीं रुकती, आत्मा तक जा पहुंचती है। भोजन से शुरू होती है पर केवल भोजन तक नहीं रुकती, मनोविकारों के भीतर प्रवेश कर वहां से उनकी निर्झरा, उनकी उनका निर्मूलन। इसका स्थूल से कोई संबंध ही नहीं है, ये यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम की है। इसलिए आगे बढ़ते चलो। प्रश्न उत्तर बहुत है अभी और हर दिन आ ही रहे नए नए प्रश्न। लक्ष्य केवल इतना रखो कि प्रश्न रियल प्रश्न हो, केवल पूछना है करके पूछना नहीं। और जो इस यात्रा में वास्तव में कर रहे होंगे उनके मन में जरूर अपने आप प्रश्नों से मुक्ति हो जाएगी, किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि प्रश्न जो है वो कन्फ्यूजन की वजह से होते हैं और सॉलिड फूड कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है। जैसे जैसे लिक्विड की यात्रा चालू होती है, लिक्विड लाइफस्टाइल हो जाता है, जो सहज है वही निरंतर है, तो अपने आप सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। स्टार्ट।
लोगों की कमेंट्स से बचने के लिए जो लौकिक में रिस्ट्रिक्शन के बीच रहते हैं वो व्रत उपवास का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि व्रत के लिए कोई मना नहीं करेंगे। फिर चाहे हम उसमें लिक्विड फास्टिंग SDF कुछ भी करें, और बालाजी माताजी कोई त्यौहार या पूर्णिमा एकादशी सभी व्रत ढूंढकर शुरू करें तो सप्ताह में 2-3 दिन तो लिक्विड लाइफस्टाइल बन ही सकती।
प्रश्न क्या है?
ऐसा कर सकते हैं, ये किसी ने सुझाव दिया।
अच्छा, सुझाव है, ठीक है, करो। भारत में 365 दिनों में 300 दिन त्योहार के हैं, और ऋषि मुनियों ने 300 दिन अलग अलग उपवास नेम व्रत नियम रखे हुए। किस लिए? इसी के लिए, क्योंकि सभी दुखों का कारण भोजन है। जब तक उसमें रूपांतरण नहीं, तब तक पुरुषार्थ की हर चर्चा व्यर्थ है। जो बाकी सभी चीजों के विषय में चर्चा हो रही है, परंतु इस एक विषय को छोड़ दिया तो बाकी कुछ भी करो, कितने भी सामान ले लो और कितनी भी सेवाएं कर लो, सारा खेल ऊपर ऊपर चल रहा है। भीतर यदि प्रवेश करना है सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि वहां पर जो सबसे गहरा संस्कार है वो विकारों का नहीं है, विकारों से भी गहरा खाने का है। और खाने में भी हमने देखा, जब तक सबसे गहरे संस्कार पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, तब तक चाहे रॉ लो, लिक्विड रॉ लो, कुक्ड लो, उससे इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। कोई 10 साल से केवल कच्चा भोजन खा रहा है, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि वो लेवल 4 पर पहुंच जाएगा, वो उसी में फंसा रहेगा। कोई केवल फ्रूट में है, परंतु फंसा वही रहेगा। आक्रमण बाहर करना ही नहीं है। जो सबसे गहरी आदत है वो है चीविंग, रिपिंग एंड बाइटिंग, चबाना। जब तक ये चबाना बंद नहीं होता, तब तक विकारों का निर्मूलन भी असंभव है। नेक्स्ट। और ये सब विधियां है, किसी को भी ला लो बीच में, बालाजी माताजी हनुमान जी। वैसे हनुमान जी आजकल बहुत चमत्कार तो दिखाई रहे हैं, आते हैं और सब समस्याएं ठीक करके चले जाते हैं, और लोगों की भीड़ लगी हुई है सरकार के पास।
है 5 महीने से बीके ग्रुप के साथ NDS ग्रुप ज्वाइन किया था। मेरे स्टोमक पेट में कई सालों से स्टिफनेस रहती थी और योग में मन बहुत भटकता था। 5 महीने से डाइट फॉलो कर रही हूँ। अभी 1 महीने से शाम को बॉयल वेजिटेबल लेना शुरू किया है, क्योंकि मेरा वेट 19 किलो रिड्यूस हो गया और बहुत वीकनेस फील होती है। डाइट भी इसलिए बढ़ा दी, मैंने मन में व्यर्थ बहुत चलता है। थोड़ा BP और थायराइड की प्रॉब्लम थी पर वो दवाई मैंने बंद कर दी थी। अब थायराइड थोड़ा बड़ा हुआ है, पति बहुत परेशान है, बीच में पति आ गया, अभी बहुत परेशान है। रोज़ कोई ना कोई टेस्ट करवाने के लिए ले जाते हैं। बहुत नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। कहते हैं ये क्या हाल बना रखा है, ये क्या कर लिया है। रोज़ डॉक्टर के पास ले जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करूं, डिप्रेशन में जा रही हूं।
इसीलिए ये प्राणिक यात्रा उसका आंसर है, उसका उत्तर है। 3 तल है। पहला तल वो लोग जिन्हें आहार के विषय में कुछ भी पता नहीं। दूसरा तल धीरे धीरे पता चलता है और तुरंत रॉ डाइट और तुरंत फ्रूट डाइट और तुरंत वीगन बन जाते हैं और तुरंत ऐसे जिद से फॉलो करते हैं कि सीधा 20-20 किलो वजन कम हो जाता है, पतले दुबले हो जाते हैं और दुनिया दुश्मन बनती है, मित्र संबंधियों को दुख होता है, और फिर एक दिन ये यात्रा छोड़कर वापस वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ पहले थे। तो देखा गया है, चाहे स्वास्थ्य के कारण कर रहे हैं, चाहे डिटॉक्स के कारण कर रहे हैं, चाहे वजन घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, ये जो कुछ कर रहे हैं ये केवल कैटेगरी 2 है। और इसमें बहुत खतरा है, इसीलिए प्राणी की यात्रा के 3 नियम है। पहला, वेट घटे ना, वेट स्टेबिलाइजेशन। दूसरा, एनर्जी स्टेबिलाइजेशन, एनर्जी की अनुभूति हो कि दिन रात ऊर्जा इतनी बढ़ रही है, पहले 24 घंटों में से 18 घंटे काम करने से थक जाते थे, अभी 24 घंटों में से 22 घंटे काम करते फिर भी थकान नहीं होती है, इतनी ऊर्जा का विस्फोट हुआ है भीतर। अगर ये नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है। और तीसरा, धीरे धीरे नींद अपने आप कम होती जाएगी, अपने आप, उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। और हो सकता है शुरुआत में तो बढ़ जाए, 8 घंटे से 10 घंटे हो जाए, ठीक है चलेगा। ये 3 है। और चौथा और एक क्राइटेरिया जो ऐड होता है वो है निरंतर खुशी और आनंद। अगर ये 3-4 चीजें नहीं हो रही है तो वो प्राणी की यात्रा नहीं है, इतना समझ लो। चाहे NDS, चाहे किसी भी तरह की ऐसी बहुत सारी संस्थाएं या मूवमेंट्स है संसार में जो स्वास्थ्य के लिए है, जो चाहते हैं कि संसार दवाइयों से मुक्त हो जाए, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे, परंतु ये सब के लिए बहुत दृढ़ता भी चाहिए फिर। और इसलिए कहा, क्विक डिटॉक्स नहीं हो जाना चाहिए, स्लो डिटॉक्स, डाइल्यूट द डिटॉक्स, नहीं तो सीधा फास्टिंग, ड्राई फास्ट और वाटर फास्ट करो, सीधा 10 किलो वजन कम हो जाता है। एक निगेटिव इंप्रेशन शरीर में क्रिएट होता है, एक निगेटिव इंफॉर्मेशन अंदर जाती है और वो रिटेन करता है व्यक्ति, क्विक हो जाएगा, एकदम फरिश्ता स्थिति की अनुभूति एकदम तुरंत, परंतु सस्टेनेबल नहीं है, लंबा समय नहीं चलेगा ये। कितना दिन रॉ सस्टेनेबल नहीं चलता है, फ्रूट्स केवल सस्टेनेबल नहीं है, दीर्घकालीन नहीं चलते केवल फ्रूट। और जो इस यात्रा पर जाते हैं वो जिद्दी और अहंकारी भी बन जाते हैं, वो दूसरों को तुच्छ समझते हैं, और पावर तो ज्यादा आ ही जाती है। इसीलिए सबसे पहले तो ये जो कुछ कर रहे उसमें अपने वेट को बढ़ाने पर फोकस करो, अभी वो बाकी सब छोड़ो। और उसकी कई सारे उत्तर पिछले 10 दिनों से दिए जा चुके हैं, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे, ये पहला। और दूसरा, केवल शरीर की बीमारियों पर काम नहीं करना है। प्राण ऊर्जा कहाँ है? प्राण से जुड़ने की कोई भी चर्चा नहीं आ रही है अभी तक, जितने प्रश्न आए हैं
शारीरिक तल पर
सब शरीर पर पड़े, जबकि हमारी ये पूरी कहाँ गई यात्रा? हाँ, ये इतनी बड़ी यात्रा और इतने सारे टॉपिक्स में से किसी टॉपिक पर कोई खास प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये सब बीमारी, शरीर और बीमारी, शरीर और बीमारी, डायबिटीज है, ये है, वो है, कोई भी बीमारी रहने दो, उत्तर एक ही है, प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा है ही नहीं शरीर में तो ये सब बीमारियां है, मोटापा है, डायबिटीज है, ये है, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, इसका क्या करूं, इसका उत्तर देने यहां नहीं बैठे हैं। ये बीमारी से क्या होगा, वो बीमारी को कैसे मुक्त हो, वो नहीं, अपने अंदर प्राण ऊर्जा ब्लॉक है इसलिए बीमारियां है, यही उत्तर है। शरीर में फंसा हुआ मल ये बीमारियों का कारण है, उसको, शरीर को शुद्ध करो। यात्रा फिजिकल डिटॉक्स से चालू होगी पर वहां नहीं रुकेगी, इमोशनल डिटॉक्स होगा, फिर मेंटल डिटॉक्स होगा, और फिर स्पिरिचुअल डिटॉक्स होगा। आत्मा के उत्थान की यात्रा है ये। केवल शरीर से अभी एक बीमारी है उससे मुक्त हो गए, फिर क्या, अगले दिन दूसरी बीमारी आएगी। लोग एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में एक कारण से, एक पेशेंट एडमिट हुई थी हमारे पास, एडमिट थी, पर उसको कुछ ऑपरेशन करना था, यहाँ नहीं हो सकता था, उसको बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ उसका ऑपरेशन हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ घुटनों का। उसके बाद में फिर तीसरे चौथे दिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसके बाद फिर वार्ड से वापस ICU शिफ्ट किया। ICU शिफ्ट होने के बाद फिर CT स्कैन हुआ, फिर उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, फिर उसको ठीक किया। उसके बाद में फिर वापस वार्ड में शिफ्ट हुई पेशेंट, फिर वहाँ पे ठीक चल रही थी, फिर वहाँ पे उसको जब चला रहे थे तो हाथ फ्रैक्चर हो गया, फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ। और ऐसे लंबा समय होने के बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज हुई और जब आ रही थी तो एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। एक बीमारी पकड़ेगी फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी। ये बीमारियों से केवल मुक्त होना लक्ष्य नहीं है जीवन का, प्राण से जुड़ना है, प्राणिक ऊर्जा से जुड़ना है, प्राण जगत में प्रवेश करना है। और उसके इतने सारे टूल्स हमने देखे हैं, हमारे कर्म ही नरिशमेंट बन जाए हमारे लिए, हमारे कर्म ही हमें शक्ति दे, प्रभु प्रेम प्राण ऊर्जा का स्रोत है, हम स्वयं प्राणवान हैं। तो ध्यान शरीर से हटाकर थोड़ा प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाओ, ऐसे स्थानों पर जाओ जहाँ प्राणिक ऊर्जा भरपूर है, और वो सारी विधियाँ करो जिससे शरीर में प्राण ऊर्जा भरे। नेक्स्ट
किसी की फरमाइश है, आई फाइंड योर प्रिंसिपल एंड वट्ठी वेरी बेनिफिशियल, आई अंडरस्टैंड हिंदी बट नॉट फुली, सो देर आर ए फ्यू थिंग्स दैट आई कुड हैव मिस्ड, आर यू एबल टू रिपीट दिस वट्ठी इन इंग्लिश?
ये रिपीटेशन चल रहा है, इंग्लिश ऑलरेडी हो चुकी है, 36 डेज की इंग्लिश की हो चुकी है, अनस्टॉपेबल।
उन्होंने सुनी नहीं होगी तो उनको डेट बता दीजिए कौन सी है। आप इंग्लिश इसमें
इंग्लिश में हुई है परंतु शॉर्ट में हुई है,
हाँ, शॉर्ट हुआ है,
36 एपिसोड अनस्टॉपेबल,
वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट, ये दो तीन प्रश्न तो सनगेजिंग से हो चुके हैं। अच्छा नेक्स्ट, आई एम रिटायर्ड डॉक्टर MBBS एज 76 इन द फैमिली ऑफ 3 मोर डॉक्टर्स, माई हस्बैंड रिटायर सर्जन, फिर बहू भी डॉक्टर है, बट नॉट इंटरेस्टेड इन वीकेंड प्राणिक यात्रा, बट आई एम इंटरेस्टेड हाउ टू एडजस्ट द रेसिस्टेंस, नो नेचर नो पॉल्यूशन एट द टॉप बट टू डू, ये दिल्ली में रहते हैं।
दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे कम, एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा अर्थात सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ है, 360 अबव। तो वर्तमान समय लोग ऐसी ही जगह पर रह रहे हैं कि जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत है, जहाँ प्राण ऊर्जा बहुत कम है, परंतु जिसके पास चाह है उसको राह अपने आप मिल जाती है, अपने आप मिल जाएगी। अगर करना है तो कहीं से भी कर सकेंगे, सुबह उठो, ऐसी जगह जाओ जहाँ पर थोड़ा पोल्यूशन फ्री हो, और यदि धीरे 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 ये इच्छा और प्रबल हो जाए, चेंज द प्लेस, शहर को बदल दो, और हो सके तो देश को ही बदल दो, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण है। दुखी होता है व्यक्ति पॉल्यूशन में, जब ऑक्सीजन कम रहता है तो डिप्रेशन बढ़ता है, इसलिए सर्दियां जिन देशों में सूरज नहीं उगता वहां पे डिप्रेशन ज्यादा है, क्योंकि सूरज का धूप का संबंध डिप्रेशन से, भूख ज्यादा लगती है, उदासी ज्यादा रहती है, इसके लिए थोड़ा। और जो बात परिवार वालों की है वो तो कल भी हमने चर्चा की थी, जो ज्ञान में आने के बाद जो कुछ हुआ ये सेकंड टाइम ज्ञान में आना है, ये प्राणिक जन्म है, इसमें वो सब होगा जो शुरुआत में हुआ था। और कोई कोई परिवार ऐसे है जिनको कोई विरोध नहीं हुआ, प्राणिक परिवार सभी यात्रा पर है, जहाँ जो इंचार्ज है वही इस यात्रा पर है, तो नीचे वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं,
उनको जबरदस्ती चलना पड़ेगा
उनको फिर जबरदस्ती चलना पड़ेगा। जैसे कोई परिवार ज्ञान में चलता है और बच्चे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं तो जबरदस्ती सेंटर जाना पड़ता है, वो भी होगा। तो वो जो शुरुआत में हुआ वो इधर होगा। ये तीसरा जन्म है, पहला जन्म शरीर का, दूसरा जन्म ब्राह्मण, और तीसरा प्राणिक जन्म, तो इसमें भी वो सब होगा। तो ये सब जो भी है, किसी को ये ज्ञान सिखाना नहीं है, ना ही किसी को कन्विंस करने की आवश्यकता है। जिसने इसकी अनुभूति कर ली बस उसने पा लिया। जैसे सभी ज्ञान में नहीं आ सकते वैसे इसमें भी सब नहीं आ सकते। जैसे उसमें कोटों में कोई है, इसमें जो कोटों में कोई वाले है उसमें भी कोटों में कोई है। यहाँ जिसकी राशि जुड़ेगी ना बस वही होगा, वही आएगा, बाकी नहीं आ सकते इसमें।
प्राणिक राशि।
नेक्स्ट
क्वेश्चन है, कहाँ चला गया, हाँ ये है, ये हमको भी किसी ने पूछा, वैसे इसका कोई इतना अर्थ नहीं फिर भी। ओम शांति भाई जी, वन क्वेश्चन फॉर यू, हाउ HRM हीरा रतन माणिक लेफ्ट द बॉडी? अब वो वाज हिज नॉर्मल डेथ,
नॉर्मली डेथ थी। ये जितने भी ब्रदरियन लेवल 4 वाले थे, लेवल 3 लेवल 4, ये सारे जो है इन सब की प्राकृतिक मृत्यु हुई है। और व्यक्ति कब मर रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे जी रहा है वो इम्पोर्टेंट है। डेथ कैसी रही वो ज़्यादा, वो कितनी सुखदायी रही वो इम्पोर्टेंट है, और कितना जिया और क्या कुछ करके जिया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2016 में शायद, या 18 में, अभी अभी शरीर छोड़ा है कुछ समय पहले HRM. अभी शायद. नेक्स्ट, तो नेचुरल डेथ,
क्योंकि डेथ तो जो खाते पीते वो भी हंसते हंसते चले जाते हैं.
हाँ, वो मायने तो नहीं हमारे हाथ में,
तो जीवन शैली मायने रखती है.
जीवन शैली और हम क्या करके जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं.
वन टाइम फ्रूट, टेक ए मील ओनली आफ्टरनून, होल डे टी एंड कॉफी. नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फुल बॉडी पेन एंड टू मच स्लीप. बट टू डू नेक्स्ट फॉर स्लीपिंग लेस देन एंड हाउ टू इन मेडिटेशन कंसल्टेशन.
शरीर की आवाज को सुनना है, शरीर हमसे प्रतिपल कुछ कह रहा है, उसकी आवाज को सुनना है. जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है उसके साथ, जबरदस्ती करोगे तो वो दुखी होगा. इसके लिए शरीर को समझना है. अगर नींद ज्यादा आ रही है तो नींद करो, परंतु समझो ये क्यों हो रहा है, वाई. और दूसरी बात, ये जो भी बीमारियां छोटी छोटी होती है, समझ लेना ये सब डिटॉक्स है. एंड डिटॉक्स इज हीलिंग. डिटॉक्स क्या है? हीलिंग की प्रोसेस है, परंतु दर्दनाक प्रोसेस है. हेडेक होता है लोगों को, माइग्रेन हेडेक, वो स्टूल जो होता है इंटेस्टाइन में चिपका हुआ, वो मूव करता है, हेडेक कॉज करता है. न्यूरॉन्स पेट में है, न्यूरॉन्स हार्ट में है, न्यूरॉन्स ब्रेन में है. जैसे ही उसकी गति में चेंजेस होते हैं, हेडेक चालू हो जाता है लोगों को. फिर कहते हैं नहीं नहीं ये खाया आज, ये फ्रूट्स वगैरह खाया नहीं इसलिए ऐसा हो रहा है, वापस अपना वही नाश्ता आ जाओ, वो जो रोज करते हैं ना उसी से ठीक रहता है. ये कहाँ फड़ गए
झंझट.
और उत्तर तो एक ही है, जो कुछ ले रहे हो धीरे धीरे सबको लिक्विड में कन्वर्ट करते जाओ. अपने आप शरीर में लिक्विड फ्लो स्टैब्लिश होगा और सब बीमारियां दूर होगी, ऊर्जा बढ़ेगी, इमोशनल स्टेबल हो जाएंगे, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अथक की अनुभूति होगी, अशरीरी बनना आसान होगा और शरीर में हल्कापन होगा, लाइटनेस होगी. और इस अवस्था में ये अगर छोटा मोटा कुछ होता है, इसको साक्षी होकर देखना है, नॉन आइडेंटिफिकेशन. सर्दी, बुखार, खांसी, सिर दर्द, पेट दर्द, दस्त, उल्टियाँ, चक्कर, ये सब होता है छोटा मोटा. ऐसा अगर होता है तो आराम करो, गो एंड टेक रेस्ट, नींद करो बस. नींद ऑल्सो इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नींद ऊर्जा का स्रोत है. कोई रन करता है और थकता है तो क्या करता है, खाना खाता है के बीच में कि मुझे और रन करना है, नहीं, वो थक रुकता है. आराम करो, आराम से शरीर को एनर्जी मिलती है. स्लीप इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट फूड. फूड तो खाते ही, सॉलिड डालते ही उसको डाइजेशन में शरीर लग जाता है, सारी ऊर्जा तो उसको पचाने में जाती है. कहां से सेवा, ज्ञान, योग, धारणा, वो जो कर रहे हैं वो तो आदत के अनुसार कर रहे, संकल्प के आधार से कर रहे, सहज नहीं है. इसीलिए धीरे धीरे सॉलिड को हटाना है. सॉलिड खाते ही अंदर का राक्षस जगता है, विकार जगते हैं. इसके लिए वर्तमान परिपेक्ष में हमारा जो आहार है वो लिक्विड ही है. नेक्स्ट,
देर आर लॉट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम पीपल्स अराउंड अस, स्पेशली सीनियर्स, हाउ टू मैनेज.
मैंने जैसे ज्ञान में आए थे तो विरोध था, कैसे मैनेज किया था, बस वैसे ही मैनेज करो. जो कमजोर है वो गिर पड़ेंगे, जो शक्तिशाली है वो आगे बढ़ेंगे. बस आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ. रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम, शिव की हो संतान तुम. तो वो धीरे 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 नए मार्ग, अगर हाँ कमजोर हो गए तो गिर पड़ेंगे, परंतु यदि पक्के रहे तो धीरे धीरे दूसरे भी सम्मान करेंगे. परंतु यात्रा लंबी है. स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कोई भी संस्था जब चालू होगी, कोई भी क्रांति इस संसार में होगी, कोई भी नया आंदोलन इस संसार में आएगा, उसको तीन चरणों से गुजरना पड़ेगा. सबसे पहला चरण विरोध, अपोजिशन. कुछ भी नया करने जाओ विरोध होगा, सारी दुनिया विरोध करेगी. दूसरा रेडिक्यूल, हंसेंगे लोग, मजाक उड़ाएंगे, दे विल मेक यू अ बट ऑफ लाफ्टर. और तीसरा स्वीकार करेंगे धीरे धीरे. यह संस्था में भी इस तीन चरणों से गई है. जहां भक्ति का साम्राज्य था, जहां बड़े बड़े महामंडलेश्वर थे, जहां वेदों का साम्राज्य था, शास्त्रों का साम्राज्य था, उसमें अचानक इस सृष्टि मंच पर एक नया ज्ञान अवतरित हुआ. कितना विरोध हुआ, कितने लोग हंसे, और फिर लास्ट में क्या किया, स्वीकार कर लिया. तो कोई भी नई बात ऐसी ही चरणों से गुजरेगी, इसलिए बहुत धीरज। और सबसे पहली बात, दिखावा नहीं करना है, हम ये करते हम वो करते, जो करना है चुपचाप करो और अकेले करो। एक दूसरा,
कोई चर्चा नहीं,
कोई उसकी चर्चा नहीं करना है। लोग इसमें अहंकारी हो जाते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा विरोध करते हैं। वो विरोध वास्तव में तुम्हारी धारणाओं का विरोध नहीं है, तुम्हारी धारणाओं के लिए जो घमंड है उसके प्रति उनसे वो आहत हो रहे हैं। इसीलिए दिखावा जहाँ होगा, जैसे ज्ञान में भी आने के बाद जो ज्ञान का दिखावा करते हैं वो ज़्यादा समय नहीं टिक पाते। नहीं, हम तो लोग आते कहते हैं, हाँ हम तो रोज जाते हैं सेंटर पर, ये सामने से बोलने की क्या जरूरत है, ये बोलते वही है जो कभी कभी जाते हैं। दिखावा वही करते हैं जो कभी कभी करते हैं, जो करते कम है। इसलिए सबसे पहली बात, दिखावा बंद। दूसरा, गुप्त कर दो खुद को। और जैसे हमने कहा, लिक्विड्स में कितनी सारी चीजें हैं, वो चार ही चारों ही इसको तो ब्रॉड कर दिया है। पहली तो केवल रॉ या फ्रूट, अभी तो हमने इसको ब्रॉड कर दिया, इसमें कुक्ड भी इंक्लूड कर दिया।
रहम आ गया अभी थोड़ा।
रहम आने की बात नहीं है, यही यात्रा है। इसलिए इस भट्टी को चार चरणों में विभाजित किया था, पहले दो चरण इसकी जरा भी चर्चा नहीं थी, इस चर्चा को तीसरे चरण में डाला। नहीं तो, क्योंकि उसका भी बैकग्राउंड जरूरी है, उसका अनुभव भी जरूरी है। अनुभव तो अनुभव है, ज्ञान अविनाशी बीज है, वो नष्ट नहीं होता है, उसके अनुभव के आधार पर ही आगे। और ज्ञान एक साथ थोड़ी दिया जाता है, बाबा क्या कहते हैं, धीरे 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 धीरे। पहले शुरुआत में ही सीधा थोड़ी ना बता दिया, मैं परमात्मा ज्योति बिंदु परम धाम का रहने वाला हूँ, ना नहीं। ये ज्ञान कैसे प्रकट हुआ, सबसे पहले तो व्यक्ति, ये ब्रह्मा ही शिव है, ब्रह्मा ही भगवान है, ये शुरुआत यहाँ से हुई। पहला है ब्रह्मा, दूसरा शिवोहम शिवोहम, दूसरा था कि वो कैसा है अंगुष्ठ मिसल, और फिर एक दिन आके कह दिया ये भगवान अंगुष्ठ मिसल होते को, तो बिंदु इधर बिंदु लगा दिए। ये है, ये तीन चरणों में से ये ज्ञान गुजरा है। परमात्मा भी तीन चरणों में गुजरा है, पहले था ये बड़ा व्यक्ति, फिर ये छोटा थोड़ा, और फिर एकदम छोटा। तो उसने अपने आप को भी ऐसा प्रकट किया, तो ये ज्ञान भी ऐसा ही है, धीरे धीरे प्रकट हुआ, और आगे अभी तो बाकी है प्रकट होना, तो धीरे धीरे होगा नेक्स्ट। तो विरोध करते हैं, तो विरोध का कारण ये ज्ञान नहीं है, तुम्हारा अहंकार है,
नेक्स्ट
तुम्हारा घमंड।
मौसम से संदर्भित है, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ लेकिन ठंड सहन नहीं कर सकता।
जितने शरीर में टॉक्सिन ज्यादा उतनी ठंडी ज्यादा लगेगी, इसलिए जो नेचुरल डाइट पर जाते हैं धीरे धीरे उनको ठंडी गर्मी ये सबसे प्रभाव कम होने लगता है। और धीरे धीरे अगर ठंड कोल्ड रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो इसकी भी विधि है, और बहुत सारी विधियां हमने देखी। एक तो बता दिया है, अल्टरनेट शावर, गर्म से चालू करो और ठंडा पानी डाल दो, चाहे टेम्परेचर माइनस ही क्यों ना हो। जैसे ही ठंडा जाता है क्या होता है, शॉक, परंतु बाद में फिर ठंडी नहीं लगती है। और कई लोग तो ऐसे है कि जो बचपन से ही ठंडे ही पानी से नहाते, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे पास एक डॉक्टर थे, अभी तो चले गए, उनको गर्म पानी से एलर्जी थी गर्म पानी से ही एलर्जी थी। वो कितना भी रहने दो, माउंट की कितनी भी कड़कड़ाहट वाली ठंडी, ठंडे से ही नहाना है उसको, क्योंकि गर्म लेते ही प्रॉब्लम चालू होता था। हम कहते थे वरदान ही है आपको तो
और ठंडा पानी खर्च भी कम होता है।
हाँ, और ठंडा ले लेना, और वो भी छोटा वाला मग, और वो भी धीरे धीरे तो सबसे पहला तो ये एक, दूसरा धीरे 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 ठंड का एक्सपोजर बढ़ाते जाना है। सारी खिड़कियां बंद, हीटर लगा हुआ, रात भर हीटर चालू, ये बहुत डेंजरस है। बीच में पेशेंट आए थे, घर में रखे, वो आग जला के रखे, एक तो डेथ हो गई थी उसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तीन, हाँ वही तभी की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में आए थे, तो दो तो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, वो शायद बाद में डेथ हुई उनकी, परंतु एक जो था वो तो हमने खुद देखा है। तो थोड़ी देर लगाओ हीटर, और हीटर की तो जरूरत ही नहीं, वो हीटर से क्या निकलता है, खुद ही हीटर बन जाओ, हीटर भव वैराग की आग जलाओ भीतर, किसी की जरूरत नहीं है। एक तो वो, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कोल्ड एक्सपोजर बढ़ाते जाओ। इसकी भी अपने आप में अलग से ट्रेनिंग है। एक व्यक्ति है विम हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक्स है, प्राणायाम करो, ये बहुत सारी वो सिखाता है, ग्रुप्स को अपने साथ लेके जाके ट्रेनिंग कराता है विम हॉफ, तो आइसमैन कहते हैं उसको। तो ये एक ट्रेनिंग है, और ये सर्दी गर्मी ये मन का खेल है, सारा मन का है। जिसको अगर ऐसा घूम रहा है कोई और उसको पता नहीं टेम्परेचर कितना है, और फिर उसको कान में जाके कह दो कि आज का टेम्परेचर -2 है, फिर उसको ठंडी लगनी चालू होती है। अब तक कुछ नहीं था, अब तक ठीक घूम रहा था। ये खेल कहाँ है? मन का खेल है। मन समझता है, मन को अगर बता दिया, ये बिलीफ सिस्टम है, ये भी बिलीफ सिस्टम ही है। तुम लोग पूछते प्रोटीन पाउडर खाए क्या? खाओ, तुमको अगर लगता है उससे ताकत मिलती है तो खाओ। कोई कहते हैं व्हीट ग्रास जूस पीना है क्या कि नहीं पीना है? तुमको अगर लगता है उससे तुमको शक्ति मिलती है तो पियो, नहीं तो नहीं पियो। वो भी तुम्हारे मन का है, सारा खेल मन का है। लेवल 4 हमेशा याद रखना है। लेवल 4 अर्थात वो व्यक्ति जिसे ना खाने की जरूरत है ना पीने की जरूरत है। ऐसे हजारों लोग संसार में वर्तमान में भी है लेवल 4 कैटेगरी के। अपने को उनके साथ कंपेयर करना है। और तुम जो कुछ कहते हो कि ये जरूरी है, कि वो जरूरी है, ये खाऊं, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, विटामिन कहाँ से? हाथी को प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? घास खा रहा है दिन भर, इतना बड़ा शरीर। चिंपैंजी को कहाँ से मिल रहा है? ये सब एडिक्शन सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम को है। नेक्स्ट,
एक माता जी हैं, इनका ये प्रश्न है। वैसे टीचर बहन ने माता जी के प्रति प्रश्न किया है। माता जी पाठशाला चलाती हैं, परंतु जुलाई महीने से उनको ब्रेस्ट कैंसर है, डिटेक्ट हुआ। लेफ्ट साइड में ऑपरेशन के बाद गांठ निकाली गई। दिसंबर महीने तक 4 केमोथेरेपी की गई। अभी डॉक्टर्स और 4 केमोथेरेपी देने के लिए कह रहे हैं। पांडव उनकी 108 दिन की प्राणिक भट्टी में रेगुलर क्लास सुन रही थी, थोड़ा पार्टिसिपेट हो रही थी, परंतु अभी माता जी की इच्छा है कि भट्टी में आप जो समय प्रति समय प्राणिक विधि बताते हैं, क्या माता जी वो कर सकती हैं?
यस, बट एक ही है, कीमोथेरेपी जो चल रही है उसको बंद नहीं करना है। जो मेडिसिन चल रही है, जो ट्रीटमेंट चल रही है, उसको पूरा करो। क्योंकि ये यात्रा तो उनके लिए है जो स्वस्थ है, जिनको कोई बीमारियां नहीं है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये कर रहे हैं। परंतु जब शरीर बीमार पड़ता है तब सीधा इस यात्रा पे नहीं आ सकते। इसीलिए जितना हो सके करो, पर अपनी दवाइयां चालू रखो। जब वो पूरा हो जाएगा कोर्स, तब फुल फ्लेज्ड इसको करना फिर। और अभी हो सकता है कि इसमें सबसे अच्छा तो हम कहेंगे किसी नेचर की ओर सेंटर में चले जाओ कुछ दिनों के लिए, 15 दिन 20 दिन वहां रहो। क्योंकि बीमारियों से अगर छूटना है तो उसकी विधि है फास्टिंग, उसकी विधि है नेचुरल डाइट, उसकी विधि है जूस फास्टिंग। फास्टिंग बीमारियों से के लिए बेस्ट है, परंतु प्राणिक यात्रा फास्टिंग की यात्रा नहीं है। प्राणिक यात्रा में फास्टिंग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि फास्टिंग में शुरुआत है, एंड है। फास्टिंग में बीमारियों से मुक्ति है। ये इज नॉट रिकमेंडेड हियर, क्योंकि हमारा तो परमानेंट है, हमारी शुरुआत है पर उसका कोई अंत नहीं है। और हम यहाँ जीवन शैली बना रहे। लोग जूस फास्टिंग करते, 4 दिन जूस किया, 10 दिन जूस किया, या लंबा अगर किया तो वजन घटता है, फिर दुखी होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर वापस। हमारा वो लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य है जीवन शैली बनाना उसको, लिक्विड को, ताकि डाइजेशन का काम कम होते ही क्या होता है, हमारी ऊर्जा बची रहती है। हम बहुत सारी रचनात्मक किया कर सकते हैं। रोज दोपहर को सोते थे 4-4 घंटे, तो 3-3 घंटे, वो धीरे धीरे हमारे पास टाइम बचा हुआ है। अब क्या करें, टाइम बचा है तो तपस्या करो, किताबें पढ़ो, रचनात्मक चीज़ें करो। किचन खाली हो गया है, किताबें रखो वहाँ पर। अब फ्रिज रेफ्रिजरेटर पूरा खाली, कुछ है ही नहीं रखने के लिए, क्या रखे उसमें? बंद करो और किताबें रखो।
किचन को लाइब्रेरी बना दो।
किचन को लाइब्रेरी बनाओ। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राणिक एनर्जी? इज इट प्राणवायु, या इज इट एथर स्पेस, द फिफ्थ एलिमेंट, या एनीथिंग एल्स?
ये 78वां दिन है आज का।
फिर भी प्रश्न पूछने की ताकत रखी है उन्होंने।
व्हाट इज प्राण? प्राण जो शब्द है, ऊर्जा, ऊर्जा इसको अलग अलग नाम है। कोई इसको ची कहता है, कोई उसको की कहता है, कोई इसको का कहता है। भारत में इसे प्राण शक्ति कहते हैं, कोई उसे ऑर्गन कहता है, कोई उसे मना कहता है, कोई उसे द वाइटल फोर्स कहता है, द वाइटल एनर्जी कहता है, द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स कहता है। ये जो सर्वत्र ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, और ये ऊर्जा केवल बाहर नहीं है, भीतर भी है, हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, दोनों तरफ है। ऐसा कोई स्थान नहीं है सृष्टि में जहां ऊर्जा नहीं है। और ये सारी हमारी जो डेफिनेशन है, इसमें प्राण ऊर्जा ज्यादा है, इसमें प्राण ऊर्जा कम है, ये सब भी एक लो लेवल है। एक हायर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में सब कुछ ऊर्जा है। इसीलिए ऐसा भी दिखाया गया, जो संत महापुरुष होते थे वो झूठा खाते थे, सड़ा हुआ खाते थे, फ्रेश फ्रेश हम कहते थे फ्रेश खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, उसमें ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, ये सड़ा हुआ। पर ऐसे नागा साधु और ऐसे कई सारे साधुगण हैं, वो तो मांस, सड़ा हुआ मांस खाते थे फिर भी हेल्दी रहते थे। ये सब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बातें हैं। तो प्राण ऊर्जा, प्राण सर्वत्र है। हम कहते हैं कि आप वो बताओ, आप जो दिल्ली की बात कही, दिल्ली में रहो या माउंट आबू में रहो, जो हायर लेवल 4 पर है उसके लिए सब समान है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर भी रहो, आप चांद पर भी चले जाओ, वहां पर भी आपको प्राण वायु मिलेगी, क्योंकि द सोर्स ऑफ प्राणा इज यू। यह सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, आत्मा ही प्राण ऊर्जा है सबसे बड़ा। और परमात्मा प्राणेश्वर है, प्राणनाथ है, प्राणेश है, प्राणों का सागर है वो। जब आत्मा उसके साथ जुड़ती है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, न खाना न पीना। आत्मा का शरीर में होना काफी है इस शरीर को चलाने के लिए, पर यह लेवल 4 ब्रदरियन है, इस अवस्था में तुरंत नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमें व्यसन किसका है, खाने का, चबाने का, ईटिंग का, ड्रिंकिंग का। इसलिए धीरे धीरे यात्रा ईटिंग से चालू की, ड्रिंकिंग में। बॉडी ऑफ डाइजेशन का जो शरीर है उसको हमें एब्जॉर्प्शन का शरीर बनाना है, जो खाने की आदत है उसको हटा के पीने की आदत बनाना है, और फिर धीरे 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 इससे भी हटके चार्जिंग वाला शरीर बनाना है। फिर हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, धूप में थोड़ा सा घूमे चार्ज हो गए, ना पीने की ना खाने की। कितने लोग आज वर्तमान में हैं, लेवल 4 पर जी रहे, वो हफ्ते में 15 दिन में 1 घंटा सोते, 2 घंटा सो लेते, या अभी खाते भी है तो इसलिए खाते हैं, चाय पी लेंगे थोड़ी सी, वो भी टेस्ट के लिए, इसलिए नहीं कि भूख लगी है, एंजॉयमेंट के लिए। ये वो लेवल पर पहुंचे हुए लोग,
जीभ काम कर रही है, कोरोना तो नहीं हो गया, टेस्ट के लिए।
तो इसलिए ये जो है प्रश्न, इधर ऊर्जा ज्यादा उधर, तो प्राण जो है ये ऊर्जा है, इसको कहते हैं ऊर्जा। अब अभी हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा ब्लॉक्ड है, क्यों? फूड के वजह से, खा खा के, 3 बार खाना, 3 बार नाश्ता, 4 बार टोली, प्राण ऊर्जा 0। फिर ओपीडी में आते हैं, डॉक्टर साहब कोई ऐसी तगड़ी सी दवा दो जिससे ताकत आ जाए। वो 5 इंजेक्शन आप लगाते हो ना, वो वापस लिख दो, B12 वाले, B12 के इंजेक्शन भी लगा दिए, डी का भी ट्रीटमेंट कर दिया, विटामिन के इंजेक्शन भी चालू है, च्यवनप्राश भी ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं, परंतु ताकत नहीं लगती, थकान थकान सी लगती है, क्या करें अब। वो एक ताकत वाला दूसरा इंजेक्शन है, वो वाला लगा दो थोड़ा, कोई और बताओ, कुछ और अच्छा वाला कुछ होगा, विदेश का, पैसों की तो चिंता, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो मैं आगे पीछे नहीं देखता। उस दिन कहानी सुनाई ना, बस वही सब कुछ करने की तैयारी है, परंतु प्राण ऊर्जा, जब तक प्राण ऊर्जा नहीं भरती, और जहां फूड है वहां प्राण ऊर्जा कम हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे जैसे ही लोग उपवास पे जाते हैं, कैसी पावर आ जाती है, जैसे ही जूस फास्टिंग करते हैं पावर आ जाती है, पर वो केवल वहीं तक रहती है। हमारी तो यात्रा लंबे समय की, अपने शरीर में प्राणा इंस्टॉलेशन की यात्रा है, सॉफ्टवेयर है प्राणा, उसको इंस्टॉल करो बॉडी में, और जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो फिर बाहर की चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, तब अपने आप अशरीरी अवस्था, तब अपने आप ये कहना नहीं पड़ता है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यहाँ दिन रात रटे जा रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति, मैं मास्टर, इधर गिरते हैं, उधर गिरते हैं, इधर नींद और उधर नींद, बाबा मेरी मदद कर दो, घुटनों का दर्द ठीक कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आज ही कहा है, तुम्हारा ऑक्यूपेशन है मास्टर सर्वशक्तिमान, सुबह की मुरली पार्टी नंबर 2, तुम्हारा ऑक्यूपेशन है ये। परंतु भगवान ने जो ज्ञान दिया इतना आसान नहीं है, इतना गुह्य है वो, उसकी डेप्थ में घुसना है, उसको अनुभव करना है, अनुभूत हो वो ज्ञान, अनुभूति के तल पर आए वो। तो प्राण ऊर्जा है, अभी हमारे अंदर ही है पर हम भूल गए, वो सोई हुई है, उसको जगाना है, और जगाने की विधि है ये सारी, इतनी सारे जो टूल्स हमने देखे शुरुआत से, पहले दिन से आज तक, एक 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 टूल का प्रयोग करते रहो, सन गेजिंग करो, बेयर फुट करो, कभी फास्टिंग करके देखो, कुछ भी करके देखो, जस्ट सी, ऑब्जर्व, क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए बस। नेक्स्ट,
मेरा सवाल है कि इंसान के जीवन भर परीक्षाएं होती रहती हैं, वो कब तक धैर्य रखे कि आज नहीं तो कल सब उसका उसके साथ अच्छा होगा, कब खुशियां जीवन में लौटेंगी।
जीवन संघर्ष है सतत, निरंतर सीखते जाना। योर लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। अभी अभी जो तुरंत ताजी ताजी भूल की ना, वही तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर। कल कहा ना, तुम 100% भूल करते हो, अभी भोले बन गए हो भूल करते करते। कल की मुरली 100% भूल करते, भूल करने का युग है ये, 100% भूल करने का युग है ये। तो भूल तो होगी, परंतु उससे सीखना है, उससे आगे बढ़ना है, और इसी में एंजॉयमेंट है। अपने विघ्नों को एंजॉय करो। वाह क्या विघ्न है, क्या कमेंट्स, क्या अपोजिशन, क्या विरोध, क्या क्रिटिसिज्म, व्हाट अ रोस्टिंग। वाह वाह वाह, अभी तक तो खाली तारीफ करने वाले मिलते थे, उससे कुछ फायदा हुआ, कोई उन्नति हुई उससे? तो और ही बाह्यमुखी मुड़े बने। हाँ, जब अचानक निंदा होती है तब सोचते हैं अच्छा, तगड़ा झटका लगता है। जो उड़ रहे थे एकदम ऊपर ऊपर, सीधा जमीन पर आते हो, क्रैश लैंडिंग। और यात्रा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा है। इस यात्रा में लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं है, यात्रा इंपॉर्टेंट है। और यात्रा में ये सब होना ही चाहिए, नहीं तो यहाँ से बैठे, कई लोग यात्रा एंजॉय ही नहीं करते। रात में सो, दिन में यात्रा करनी है, सुबह सो जाते हैं ट्रेन में, जहाँ पहुँचना है वहीं उतरते। और जो दूसरे होते हैं वो कितना एंजॉय करते हैं, देखते ये दिखा वो दिखा। तो यू डिसाइड क्या करना है, यात्रा का एंजॉय करना है या सो जाना है, बस उठेंगे वहाँ। तो धीरज तो धारण करना अपने आप होगा, वो एंजॉय करते जाओ बस। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर पर रहती हूँ, 17 वर्षों से समर्पित हूँ। सेंटर पर जो आते हैं वो कहते हैं यहाँ की स्टूडेंट ना फ्रूट लेते हैं ना ड्राई फ्रूट लेते हैं, कैसे जूस की प्राणी की यात्रा करें?
क्या क्या कौन कहता है?
सेंटर पर जो आते हैं ये टीचर बहन है, मैंने यहाँ के स्टूडेंट ना जूस लेते हैं ना फ्रूट लेते हैं, ये टीचर बहन कह रही है, इनका क्लियर नहीं है प्रश्न ये।
हाँ तो
सेंटर जो स्टूडेंट
रहते हैं दूसरे को जिसको जो पसंद है उसको वो देते रहो, क्योंकि ये यात्रा जो है ना, ये आज की मुरली में है फरिश्ता सो देवता। ठीक है, देवता आकर फरिश्ते पर हंसते थोड़ी ना है, या फरिश्ता आकर मनुष्यों पर हंसते है क्या? नहीं। या मनुष्य आकर पशुओं पर हंसते है क्या? नहीं। ये यात्रा है पशु से मनुष्य बनने की, पहले तो अभी पशु है,
बंदर से मंदिर,
पहला है पशु, चीविंग एनिमल इंस्टिंक्ट है, पहले तो मनुष्य और फिर मनुष्य से फरिश्ता और फरिश्ते से देवता। तो ये जो है इसको इस पर हंसना नहीं है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ये क्यों चबाते हो, क्यों खाते हो, क्योंकि ये इसी का इवोल्यूशन है आगे, ये इसका इवोल्यूशन है आगे, ये इसका इवोल्यूशन है आगे। इसलिए अगर हम इस यात्रा में आगे आगे के लेवल में है, लेवल 3 पर है, पर इसका मतलब ये नहीं जो लेवल 1 या 0 पर है उस पर हम हंसे। उनको खाने की आदत है, उनको खिलाओ, हाँ उनको तो बनाओ, उनके लिए और ही खुशी आएगी आपको, और बनाने में और खिलाने में ज़्यादा खुशी है खाने से। तो माता जो होती है घर में, खाती है क्या खुद, दूसरों को खिलाती है? हाँ, कई लोगों तो लेवल 3 लेवल 4 वाले शेफ है, दूसरों को खिलाते हैं, वो खुद नहीं खाते क्योंकि उनको वो उससे पार निकल गए। दुआएं मिलेगी अगर दूसरों को, आज की मुरली में कहा है बाबा ने, बांटो खुशी बांटो। हाँ, एक लेवल 4 पर है उसकी बेकरी शॉप है, अब देखो बेकरी शॉप। तो ये जैसे गिरिबाला थी, गिरिबाला को स्वामी योगानंद पूछते हैं, तुमने 60 साल से ना खाया ना पिया, निराहारी संत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किताब में इसका वर्णन है। तो वो उसको पूछता है कि आप ये दूसरों को क्यों नहीं सिखाती ये विद्या, तुम खुद ना खाती है, निराहारी संत है वो। तो वो कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि संसार में धरती पर इतना जो अनाज है ये सब है, ये सब कौन खाएगा, और लोगों को उसमें खुशी मिलती है क्योंकि दुनिया में दुख वैसे ही बहुत ज्यादा है, और भोजन में ही तो दुख कम होता है लोगों का। अगर उसको ही हटा लिया जाए इस यज्ञ से, अगर ब्रह्मा भोजन ही थोड़ा इधर कर दो तो आधे तो दुखी होके भाग जाएंगे, रुके ही उसके लिए है यहाँ, भट्टी कर रहे, कुमारों की भट्टी है, पूरा दिन भर कुमारों की भट्टी, और शाम भट्टी करने का उद्देश्य क्या है कि शाम को कुछ मिलने वाला है ऐसा मजेदार, जिससे आत्मा जिसमें तन मन को परम तृप्ति मिलने वाली है, इसलिए तो इतना दूर दूर से आते हैं भट्टी करने। अगर उनको कहा हो कि भट्टी के बाद तुमको एक एक एप्पल मिलने वाला है, तो जाने वाला तो पहले ही सोचेगा जाओ कि नहीं जाओ। फोन करके बोलूंगा आज मैं अपने कमरे में ही भट्टी कर रहा हूं, आई एम सॉरी। तंदूरी होगी तो आएगी। लोगों का फूड इज अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर, फूड इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। हाँ, तुम उससे परे निकल गए हो क्योंकि तुम्हारी यात्रा दूसरी है, पर दूसरे जो संसार के जो लोग हैं, जैसे ज्ञान में आने के बाद हम दूसरों को भी तो स्वीकार करते हैं ना, उनको घुमाते हैं, वो कहते हैं हमको अदर देवी घूमना है, हम उनको थोड़ी ना जबरदस्ती ज्ञान देते, मतलब सबके साथ हम ऐसा व्यवहार करते, हम पूरा दिन ओपीडी में रहते, किसी को कभी ज्ञान नहीं सुनाते, जो जैसा है बस उसको वैसा,
क्योंकि सामने दवाई वाले लो और जाओ, सामने वाले सुना के चले जाते हैं।
हाँ, वही तो, किसको क्यों ज्ञान सुनाए हम, ज्ञान सुनाने की जरूरत ही नहीं है किसी को। हाँ, सुनाने वालों की कमी है क्या। लास्ट एक प्रश्न ले लो।
एज 30, बीपी कुछ दिनों से हाई रहता है, 170-140, वर्किंग बॉय है 2, एक 22 ईयर्स बॉय है, स्टडी और जॉब दोनों साथ साथ कर रहे हैं, घर से दूर रहता है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखता है, ये किसी माँ का प्रश्न है।
अच्छा, माँ का अपने बेटे के लिए प्रश्न है।
फोन आदि में बिजी रहता है,
फोन में बिजी रहता है,
टाइम मिले तो आप उसको सकाश दे दें। क्योंकि वो बिजी है, उसको टाइम नहीं है।
बस प्रश्न इतना ही है ना, मतलब वो तो नहीं है ना बीपी कैसे ठीक करना वगैरह। टाइम मिले
बीपी ठीक करने के लिए सकाश देना।
माता आती है ना, कहती है आज बेटी भी ज्ञान में है पर ना उसकी ना शादी करनी, आज उसको देखने के लिए आने वाले हैं, तो आप प्लीज मधुबन से सकाश दे देना, रिश्ता पक्का हो जाए बस।
भगवान से घर से सकाश दे तो सफलता तो मिलेगी।
एक बहन पूछ रही थी ना, एक माता पूछ रही थी, बेटी की शादी है, मधुबन में भेजो क्या इनविटेशन कार्ड। हमने कहा वो सन्यासियों की जगह है। तो चलो भावना है तो क्या करेंगे अभी, क्या सकाश दो अभी, चलो योग में बेटा। बाकी प्रश्न कल देखेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार। तन तूफानी है लेकिन अस्थि अमृत की खान, आत्मा अमृत की खान है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, शरीर से आत्मा तक पहुंचने की यात्रा है, और शरीर और आत्मा के बीच सबसे बड़ी बाधा है भोजन। भोजन ने आत्मा को ढक रखा है, इसलिए जो लोग उपवास करते हैं सेल्फ सेंटरिंग की अनुभूति होती है, अपने आप की अनुभूति होती है। जो आज के जो रिएक्शन है सारे दिन भर की, वो रोज जो खाते हैं उस दिन जो रिएक्शन होती है वो अलग होती है।
क्यों
हम भोजन को नहीं खा रहे, भोजन हमें खा रहा है, ऐसी अवस्था हो गई है। साधना में पी ले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान, नहीं नन्ही सी वो आशा, नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम, एक उफान भर। ओम शांति।
तन तो फानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान,
साधना में पी ले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान,
नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम।
हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है।
नहीं बहाने कोई उलाहने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम।
अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उलाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, हो संतान तुम।
एक उफान भर, एक उफान भर, आ, 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 आ।